All of us are very fortunate to be here present for the Vedic culture. And our Vedic culture insists that all the activities should start from chanting the holy names of Krishna. We chant holy names of Krishna. We chant Mahamudra. Loudly, they don't hear.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Now lead them, stand up. Loudly.
Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Nice. So please, we'll chant few names and then we'll see what Krishna wants. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunj Bihari.
Jaya Radha Madhava, Jaya Kunj Bihari.
Jaya Radha Madhava, Jaya Kunj Bihari.
Jaya
Gopijana Labha, Jaya Giri Sadhari, Jaya Giri Vadhari.
Jaya Gopijana Labha, Jaya Giri Vadhari, Jaya Giri Vadhari.
Jaya Gopijana Labha, Jaya Giri Dhari, Jaya Giri Dhari.
Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Giri Dhari, Jaya Giri Dhari.
Jaya Yashoda Dana, Jaya Vrijadana Jana, Jaya Vrijadana Jana. Chari Jaya Bihari,
Jaya Yamuna Niravana Chari, Jaya Kunja Bihari,
Jaya Yamuna Niravana Chari, Kunja Bihari,
Jaya Yamuna Niravana Chari, Jaya Kunja Bihari,
Jaya Yamuna Niravana Chari, Jaya Kunj Bihari.
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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Rama 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 Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya
Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya
Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya 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 Gopal Jaya Jaya
Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya
Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya
Radha Ramana Hari
Govinda Jaya Jaya
Govinda
Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya
Govinda Jaya Jaya
Gopal Jaya Jaya हे गोविंदा हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल
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 केशव माधव दीन दयाल
केशव माधव दीन दयाल
दीन दयाल प्रभु इन दयाल इन दयाल प्रभु इन दयाल
दीन दयाल प्रभु दीन दयाल दीन दयाल प्रभु दीन दयाल
दीन दयाल प्रभु दीन दयाल दीन दयाल प्रभु दीन दयाल
दीन दयाल प्रभु दीन दयाल दीन दयाल प्रभु दीन दयाल
हे गोविंदा हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल
हे गोविंदा हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल
हे गोविंदा हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल दयाल प्रभु न दयाल न दयाल प्रभु इन
दयाल
इन दयाल प्रभु इन दयाल ದೀನದಯಾಳ್ ಪ್ರಭು
ದೀನದಯಾಳ್
ಸುಂದರ ಕನ್ಹಯ್ಯಲಾಲ್ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ನಂದ ದುಲಾಲ್ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಕನ್ಹಯ್ಯಲಾಲ್ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ನಂದ ದುಲಾಲ್ ದುಲಾಲ್ ಪ್ರಭು ದುಲಾಲ್ ದುಲಾಲ್ ಪ್ರಭು ದುಲಾಲ್ ದುಲಾಲ್ ಪ್ರಭು ದುಲಾಲ್ ನಂದ ದುಲಾಲ್ ಪ್ರಭು ದುಲಾಲ್ ದುಲಾಲ್ ಪ್ರಭು ದುಲಾಲ್ ನಂದ ದುಲಾಲ್ ಪ್ರಭು ದುಲಾಲ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಗೌರ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಜಯ ಜಯ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪ್ರಭುಪಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕಧಿ ಜಯ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಜಯ ದಾರಿ ಕಧಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ದಾ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಜಯ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದಾ ಗೋವಿಂದ ರಾಧೆ ಹರಿ ಭಾರತಿ ಹರಿ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧಾ ಗೋಕುಲನಂದ ರಾ ಗೋಕುಲನಂದ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧಾ ಗೋಪಿನಾಥ ರಾ ಗೋಪಿನಾಥ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧೆ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧೆ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಧೆ ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ 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 ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವೀರರಿ ಕಚೇರಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಷ ಶ್ರೀಮದ ಪೈಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವಿಧಾನ ಸಮಾರಾಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಕಿ ಇಸ್ಕೋನ್ ಬಿಬಿಡಿ ಫೌಂಡರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಕಿ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣೀಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಕಿ ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ నమాచార్య శ్రీదాస్ ఠాకూర్కి, చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద, శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసరి గౌరభక్తులకి, శ్రీ శ్రీ రాధాకృష్ణ గోపీనాథ్ శ్యామకుండ రాధాకుండ గిరిగోడానికి, శ్రీ శ్రీ భూమి వృందావన ధామ్కి, కృష్ణ జన్మ మథురాజి ధామ్కి, శ్రీ శ్రీ రామ జన్మ అధపురి ధామ్కి, శ్రీ మహాపూర్ నదీ ధామ్కి, శ్రీ పురుషోత్తమ క్షేత్ర జగన్నాథ్పురి ధామ్కి, శ్రీ త్రివిక్రమ క్షేత్ర ద్వారకా ధామ్కి, ఉషామండల ద్వారకా ధామ్కి, శ్రీ శ్రీ ద్వారకాపురిజీకి, వామన్ క్షేత్ర ద్వారకా ధామ్కి, శ్రీ శ్రీ గోమతి ద్వారకాజీకి, గోమతి గంగాజీకి, శ్రీ గంగామాయమునమాయజీకి, భక్తిదేవి తులసీదేవి జీకి, సామవేద్ భక్తులందరికి, హరినామ సంకీర్తన మహాయజ్ఞకి, శ్రీ శ్రీ హరే కృష్ణ మహామంత్ర యుగ ధర్మకి, శ్రీ శ్రీ సింగపూర్ ఇస్కోన్ యాత్రకి, శ్రీ శ్రీ రుక్మిణి ద్వారకాధీశ్జీకి, శ్రీ శ్రీ రాధామదన్ మోహన్ జీకి, శ్రీ శ్రీ సీతారాం లక్ష్మణ్ హనుమాన్ జీకి, శ్రీ శ్రీ జగన్నాథ్ బల సుభద్రాజీకి, శ్రీ శ్రీ గౌర నితాయిజీకి, గౌర ప్రేమానందే, గౌర ప్రేమానందే, గౌర ప్రేమానందే, ఆల్ గ్లోరీస్ టు దేశం, ఆల్ గ్లోరీస్ టు దేశం, ఆల్ గ్లోరీస్ టు దేశం, ఆల్ గ్లోరీస్, ఆల్ గ్లోరీస్. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, కుచ్ హై నవీ జూనీ కుచ్ హై కుచ్ నయీ భీ నయీ జూనీ భీ ఐసా మే వృందావన్ ది సెరిమనీ ఇస్ రియలీ గ్రాండ్ వి ఆర్ వెరీ మచ్ ఒబ్లైజ్ టు సుదర్శన్ ప్రభు ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దట్ సో ఇట్స్ సో నైస్ టు సీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ the whole paraphernalia is, you know, to redirect us to the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Otherwise, there is no meaning to it. And as we very well know, you know, the purport of the initiation, the word initiation is very nice. To initiate. It is to begin. It's not the end. Otherwise, what do you think? That, oh, am I guru now? Finished, you know? Hari bol, hari bol. No hari bol. We should resolve one thing today, that when we answer the phone calls, we should not answer it with hello, hello, hello. Hello is not the word, it's hello. But we have Indianized that word. So instead of that, hari bol, hari bol. Our great person is the mustache person. they hired a taxi the other day. So the taxi man knew that they are God men. You know? So he said, "You are Buddhist." He said, "Yes, we are Buddhist." He can change the faith anytime. Doesn't matter. So taxi man charged half the fare. Says, "Thank you very much. Now from today we are Buddhist." I mean to say, just we are following this philosophy, which is very practical to our life, half-heartedly, and even then there is reciprocation. Other than that, taxi man didn't know them, and this one is not a devotee at all. And who was your accomplice? Who was your accomplice? Yugoslav. Finished. He may be few percent. Yugoslav is complete. And even then there is reciprocation. And just a sangha, you know, and bit of chanting, and rasgullas in their stomach. So please, remember that this is the beginning, you know. Initiate. It's not the end. Real life starts now. So far, we had like cats and dogs life. Eating, sleeping, mating and defending, etc. From today is a time when we should resolve that with every breath we must have one Krishna's name. And I tell you how Prabhupada had calculated this. In 1 minute we have 15 times we inhale and exhale. This is called Hatha Yoga. And if we count, it's nearly the same. 15 times we unknowingly inhale and exhale every minute. So 60 minutes, 1 hour. How many times? Vyapari. Vyapari. 900 times. And 24 hours. Now we can't do it. But it comes to 21,600 times. During day and night, we inhale and exhale 21,600 times. And if you multiply our rounds, you know, each round has 16 names, iti shodha shakam nam nam. Each mantra has 16 names. Multiply it with 108, multiply it to 16. So it comes to 22,000 or something. So 16 rounds must be completed. If you really are serious about it, then this instruction, according to Srila Prabhupada, is very important. Don't do anything else, but try to squeeze in your busy life some time in which you will chant nicely. And then again, we haven't chanted so far, so we have to clear the date also. Every day we have to chant 16 rounds. How many years are gone without chanting? 30 years? They're gone, fast. So multiply it with all 16 rounds every day. So how many dates we have to clear? So frankly speaking, we don't have any time left. But to the best of our ability, we should utilize this breath to chant Krishna's names. That is initiate, the beginning. Please, don't cheat yourself and to others also. You know, as you put, as you, our Buddhist friends, They had beat bags and they were sitting quite all right. He might be enjoying, he might be remembering Sydney. That one might be dreaming for Yugoslavia. But he thought that, oh, these persons are God men, you know. He didn't know that since last two days they were nicer as good as and what not. But the thing is, reciprocation is there. But the defect is on our side. It is always, it is the Bhagavatam way. That there is anything, any difficulties there, we are to be blamed. And that is how we should deal with the material energy. Otherwise we can never win. We struggle for the whole of lifetime. And even the great rishis also, they also get lost. Deva atat rasana rishayo pi deva. Why? Because yishmat prasanga vimukha iha samsaranti. This is Bhagavatam. He says, Daiva Atata Ratna, I got my own plans, I smash your plans. Rushyavapite, whether he is Rushi or what, I don't want to know. I will smash. And why? Yushmat Prasanga Vimukha. Yushmat is your topics. Vimukha. I am completely opposed to discuss your topics. And that's why, what is the result? Iha Samsaranti. Iha means on this planet or any other material planet. There's so many planets. Iha Samsaranti means I am getting rotten. Sad jata hai. India, in Hindi, is beautiful. Sadna, you know. I don't find the exact word in English. When you want to cover the meaning, you use English. You know, ye maas kata hai. It's a ridiculous thing. In Hindi, maas means meat. Ye maas kata hai. It's a ridiculous term. You know that it should not be done, but he is doing. Ye machhi kata hai. Immediately we know that it's not to be eaten. Enda kata hai. It's all ridiculous term. No, without meat I can't. We cover the whole pap. The sinful activity is covered. You use meat and you are regarded as you are advanced. Without meat I can't eat. You know. Fish I must have. Seafood I must have. They don't call him fish. Seafood. It was a hard time for me in the beginning to understand the seafood. I thought that something must come out from the water. Seafood, what is this? It's a fish. I put my finger in it. Yes, seafood. As soon as you want to cover up, then you use the English language. And we are very fond of English. We're very fond of. Frankly speaking, we are forgetting your own language, our own language. The thing is, by using the different languages or the tactics in our language also, you cannot cover up the dirty activities. So from today we should make a resolve that we should never look to that part of our life. Gone is gone. In the material world, I always tell, it's the best arrangement that everything has a tendency to go into the dream stage. Now today, this is a fact. We are initiating. We had a puja. We had a nice kirtan. Everything was there. But in the evening, it will slip into the dream. This will be dream. Tomorrow, complete dream. And after 12 months, we won't even remember that we had this ceremony. Which is a fact now. But these facts in the material world, they have always the tendency to slip into the dreaming stage. That's the best thing. Whether good or bad, dreams are dreams. We learn from them maybe, but we don't moan about it or we are not very happy about it. This is the point in the material energy. And if you don't win the material energy this way, then yushmat prasanga vimukha, then you are against the topics of Supreme Lord, and then the result is iha samsaranti. You are just getting rotten in this material existence. And what can else be there? Because our bodies are full of stool and urine.
If the stool and urine
remains with us for a long time, it is going to get rotten. Wo sadegi. Kya hoga? There is no other way it can survive. So please, stop this getting rotten and come to the life. We have to be alive. And Srila Prabhupada has given us a nice process to be alive. We are running around since 4 o'clock in the morning. And we have so much engagement that we cannot complete that engagement from 4 to 7 o'clock. This is life. Otherwise there are so many people, they are breathing dead. The dead carcass can't breathe. But these are also dead, breathing dead. So don't be breathing dead from today. Please, for your good and for your generation's good, this puja will be remembered eternally by the children in this house and by the young ones who are here. And in turn, they will give to their generation. So this is the way to pass on this Vedic culture from generation to generation. So these types of sacrifices and the programs which are initiated by Srila Prabhupada as Namad programs, we should continuously repeat. So many living souls are here. Please. Kya baat hai? Samajhte hai na Angreji? Angreji samajhte? Kya raha chale? Bol. So that mass machi? Kya baat hai? Bengal mein to machi hai. This is the way to continue this tradition. Srila Prabhupada wanted to revive our old traditions. Everywhere in the village or town, the kirtans were going on. We remember the time when there was not even radio. The electronics has created havoc in our life. Every way, they are just killing us. We had to recite the tables, you know, when we were young. Before we recite the table, we will not get the prasadam. So just for our stomach's sake, we had to recite. And now we can multiply without anything. But just now, this young boy, will not be able to multiply. 2 into 2, he doesn't know. And with all the calculators, everything, 2 plus 2, he'll tell 5. Our memory is deteriorating. Everything is deteriorating. The way to improve our life is to get in touch with the Vedic culture. And this is the source of our all energy. You will feel it. As soon as you touch Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, the energy continues to flow. This is the most energetic thing we have, Prabhupada's mercy. And you just read one paragraph and you will meditate on that paragraph for the whole day, whenever you are free. Then the life will completely change. And that is initiation. Otherwise, please, don't get initiated. As it is, you are all right, dog, cat, whatever. So we can have a woolen suit on a dog also. You know? We were in America in Los Angeles. And there was a special shop for dogs, clothes. You know? We had some picture also somewhere. Nice hats also, dog had a hat. It's a craziness. Because you don't have a turban for Krishna, so we have the hats for dog. We have to have something. Either you have a turban to dog, or you have a turban to Krishna. So which is best? We have to decide today for good. Are you going to go to dogs? It's nice words. Nice in English, you know. Why are you going to dogs? And we are going to. Huh? Oh, dog sits by our side in the car. And they both go to work, because the house is very costly. So installments have to pay. And dog is sitting on the sofa. So many times you ask for whom you have bought the house. He said, for us. I told you were not there and dog was enjoying the sofa. So whose house is it? Please don't go to dogs. From today, we have stopped this tendency. And it sums up our regulated principles. As soon as you decide to stop the dogish life, then there is no need of repeating the regulated principles. As soon as you come to this point, then from today, we don't have any television. Maybe we are addicted to it even now. So for news or something, you know, we may just ask in the house, the television is there always. So why? Isn't it? The world is in trouble, and so we must know what is happening. But you can't do anything about it. Suppose if India and Pakistan fight, what can you do? You are wasting your time. Yes, Pakistan did this and India did this. America said that. Whole newspaper is a waste of time. All our news are a waste of time. Since last 15 years, we didn't see any news. Nothing is wrong with us. World is also going on here and there. You know? Please. But without Krishna, everything goes wrong. without coming to the root of the Vedic culture, everything goes wrong. And thus, only a saint like Prabhupada could diagnose it correctly, that we are missing this link, and unless we re-establish, our lives will be again dogish lives. And please stop this from today. And then we have so many verses, you know, for initiation, and one very nice verse, 434, we always repeat. What is it? Tadvidhi? Vinyate jnanam, jnanin stata darshana. It's a nice verse to repeat. And I'm very happy, very bold. You should have the submission inquiry, and I will impart. I'm very happy. This was the best verse in Bhagavad Gita for me. And why, you must obey. Tatvidhi, you know, you must know. Pranipata, you know. Dandavat. And do you understand Yugoslavia? You understand this? You didn't pay that much obeisance. So you don't understand this. Always, whenever you see me, I fall flat. And I'll enjoy, you know. Ah, that is the way, you know. But we miss the point again. In initiation also worse. We miss the point. We're very happy to miss everything except dollars. So, may Lord bless us and forgive us for all these offenses. Please, please. Jnaninas tattva darshina, that is the important part. Tattva darshi, those who really see actual fact, they are known as tattva darshi. And then they impart some knowledge to you. But this is not enough again. You pay obeisances and I give lecture. You know? Big, now you have to hear, right? You're here, you are getting initiated. And since now, you should not move your leg without my permission. This is not the way. But we miss the point again. That next verse, that is 435, is the important verse. And that gives you the clue to the Vedic culture. And unless you follow the next verse, the first verse has no meaning at all. First verse, nourishes my pride. So I am very proud. I am Jnani, may not be Tattva Darshi. I'm Jnani, you know. I know what is what. I'm very brave to tell all other people what to do, except myself. And this is very nice to nourish our own pride, you know. But then when we come to the next slide, oh, I perspire. And next verse is more important than this verse. No doubt there are submissive inquiries. It's natural. It's natural. You see somebody elevated than you or whatever, and you are submissive. That is our way in India. Indian masses, you talk anything, He doesn't understand anything. Herman, what is who? Yes, you are talking very nice. Once there was a lecture in South India. Some Swami came in. And so many people went to hear him. After they came out, they were praising me like anything. Swami talked so nice, so nice, so nice, so nice. So somebody asked, what was nice about it? Oh, he talked so high, we don't understand anything. So there are lords of Swamis of this type. They talk what they don't understand. So what to talk with the hearers? So please, this is not the way. We should always find out what is suitable to us with continuation of the material life. For everybody it is not possible to leave everything. To leave everything and put on saffron clothes or come to Krishna for good is the best possible thing. It's really best. That's why I insist that Vamana should not change saffron. Do you understand, son? You understand? You are clever enough. Because this is the best way. But we are not ready for that. We have our own desires, we have our own responsibilities. Kali Yuga again, you know, there are so many other things are there. Every day we require Lakshmi. You know. So these facts cannot be overlooked. And we must try to find out some relationship between the spiritual progress and the material activities. They cannot be separated. That is what the tendency is, that we may perform puja in the morning. But then he says, in my shop I can't follow these things. Or at my work I can't follow this. No. We have to think about these things. Sane person always thinks and comes to the practical point. As soon as he decides wholeheartedly that I have to have the spiritual progress. Without that I cannot survive. Our foundation is always spiritual. But then, at the same time, in order to fulfill our desires, our parents' desires, or the society's requirements, so many things we are indebted. So we have to have some connection between our day-to-day activities and the spiritual progress. And this is where the second verse, next verse, gives us the clue. He says, after initiation, what is to be done? Read 35. Let them repeat.
Yat yat nyatvana punarmoham.
Yat nyatvana
punarmoham.
Yat nyatvana punarmoham.
Yat nyatvana punarmoham.
Evam yasyasi pandava.
Evam yasyasi pandava.
Evam yasyasi pandava.
Evam yasyasi pandava.
Yena bhutani ashesani.
Yena bhutani ashesani.
Yena bhutani ashesani.
Yena bhutani ashesani.
Drakshasi atmani ato mai.
Drakshasi atmani ato mai.
Drakshasi atmani ato mai.
Drakshasi atmani ato mai.
Okay.
Yat nyatvana punarmoham.
Yat nyatvana punarmoham.
Yat nyatvana punarmoham.
Yat nyatvana punarmoham.
Evam yasyasi pandava.
Evam yasyasi pandava.
Evam yasyasi pandava.
Evam yasyasi pandava.
Yena bhutani ashesani.
Yena bhutani ashesani.
Yena bhutani ashesani.
Yena bhutani.
Drakshasi atmani yato mai.
Drakshasi atmani yato.
Repeat the equivalent.
Yat.
Yes.
Which?
Which?
Nyatva.
Nyatva.
Knowing.
Knowing.
Na.
Na.
Never.
Never.
Punaha.
Punaha.
Again.
Again.
Moham.
Moham.
Illusion.
Illusion.
Evam.
Evam.
Like this.
Like this.
Yasyasi.
Yasyasi.
You shall go.
You shall go.
Pandava.
Pandava.
O son of Pandu.
O son of Pandu.
Illusion. And what is the illusion that we have to find out? It's very simple definition of illusion is. You know, in Hindi, it's a nice word, dharmashala. What is the meaning of dharmashala? We'll explain. Man, you are killing me. Do you know Hindi? Do you know Hindi? It's not the residence but the house like homeless. No, no, no. Who knows Hindi? Dharmashala, yes?
Yes, Prayas
place. Prayas house. Prayer? House. In Bangladesh, they go there and pray? You are here 10 years, isn't it? Forgot Bangladesh. Yes, who will give? Yes? Anybody?
Dharmashala is Bengali.
Bengali? Oh, that's very nice. It's Gujarati also. And Hindi also. So all languages are Dharmashala. The meaning of Dharmashala is, you know, we have in India, so many pilgrim centers are there. So you go there, and it's a free residence. They charge something now, but otherwise it's free, comparatively very free. If you go to the hotel, they may charge you 200 rupees per day. Here, Dharmasala manager may charge you 20 rupees a day. So very cheap. And these nice buildings, and nice furniture, nice rooms, all facilities are there. You can have the utensils also to cook. Every facility is there. But the meaning of Dharmashala is, you are in a pilgrim center. So you may stay there for a day or two or a week, or 2 weeks maybe. But you are fully aware that we have to go. This is the meaning of Dharmashala. That all the facilities are best. The building is also best, rooms are nice, furniture is also very good. But all the time we have the full consciousness that we have to go from here. So we utilize everything. We use it. But we don't claim any ownership. This is the meaning of Dharmashala. Because all the time we stay in that building, we are fully aware that I have to go. So the furniture is best, everything is best, but we are not attached. Because we don't claim the ownership. As soon as there is ownership, this moha creeps in, illusion creeps in. And that Dharmashala may be for a week or two, and this and Dharmashala may be for 60 years. It doesn't matter. Time element doesn't matter. But Dharmashala is Dharmashala. So this is the knowledge. That as soon as you know this, that you have to go, all your activities will be quite correct. Because you don't know this, that we have to go, and this is my place forever, then all the inabilities creep in. As soon as you know that this whole planet is a big Dharmashala, so there are so many nice gardens, so many houses, so many buildings in Singapore, so many skyscrapers are there. Pakistan can very well destroy it.
Radha Gokulanand Mandir mein नंदोत्सव के शुभ अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। इसी दिवस पर कृष्ण भगवान के पिताजी नंद महाराज ने बड़े धूमधाम से श्री कृष्ण के आविर्भाव का महोत्सव मनाया। कल हम ये चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण यहां पर अवतीर्ण हुए और वहां पर वृंदावन में आकर उन्होंने किस तरह के सुंदर मधुर लीलाएं प्रदर्शित की हम सब के लिए, हमारे उद्धार के लिए। वृंदावन में नंद महाराज और माता यशोदा अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रही थीं, क्योंकि उनको यहां बहुत समय के बाद एक पुत्र हुआ। बड़े लंबे समय से अभिलाषा थी हृदय में कि एक बच्चा हो, एक संतान हो, पुत्र हो, और कई सालों के बाद में उनके घर में साक्षात भगवान ही पुत्र के रूप में आ गए। सारे वृंदावन के निवासियों के पास जब खबर पहुंच गई तो सारे गोप गोपियां नंद महाराज के घर की ओर चल पड़े। उधर नंद महाराज जी खुशी के मारे नाना प्रकार के दान दे रहे थे, ब्राह्मणों को, याज्ञिकों को, वंदियों को, माघदों को, सूतों को। बताया जाता है कि 20 लाख गौओं का दान दिया। गौ दान का बहुत महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि गाय ये माता है और उत्कृष्ट दान है, क्योंकि गाय ही हमारे संस्कृति में धन मानी जाती है। हमारे बैंक के नोट ये असली धन नहीं है, ये आज हैं और कल नहीं, कल इनकी कीमत कम हो जाएगी। लेकिन जिसके पास गाय है उसके पास अमृत है, उसके पास असली धन है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रिय हैं गाय, इसलिए नंद महाराज ने सारे ब्राह्मणों को 20 लाख गौएं दिए। आज हमें गौशाला अगर आरंभ करना है तो कहीं से 2, 5, 10 गाय लाना तो बड़ी बात हो जाती है, लेकिन ब्रज के गोष्ठों में लाखों गौएं थी, कोई कमी नहीं थी गौओं की। इसलिए नंद महाराज में हृदय से दान दिया सारे ब्राह्मणों को, भक्तों को, और वहां पे उनके पास जो गौएं थीं, उनका ऐसे उनको सजाया गया था कि आजकल हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हल्दी और तेल के मिश्रण से उनको लेप लगाया गया, फिर लाल रंग के सुंदर सुंदर रेशम के कपड़े पहनाए गए, उनके सींगों के ऊपर सोना था, सोने के आभूषण, और इस तरह से गौएं और बैल भी बड़े सुंदर लग रहे थे। नंद महाराज के वृंदावन में वो एक आभूषण बन गए थे। वास्तव में जहां गौएं होती हैं वो जगह सुंदर बन जाता है, गौएं से जगह बहुत आकर्षक लगने लगती है। जहां हरियाली हो, अन्न हो और जहां गाय है, वहां किस चीज की कमी हो सकती है। गोमय वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में भी लक्ष्मी देवी निवास करती है। तो जिनके पास गाय है, भले वो दूध भी नहीं दे रही हो, कम से कम गोबर तो देती है, और जहां गोबर में लक्ष्मी देवी है तो वहां गरीबी भला कैसे हो सकता है। अगर किसी किसान के पास धन नहीं है, इसका मतलब है कि वो गोबर का प्रयोग कैसे करना ये नहीं जानता। तो वृंदावन में ऐसी दशा थी, सभी लोग वहां धनी थे, सारे गोप वहां के, हालांकि किसान थे, लेकिन आजकल की परिस्थिति अलग है। हम देखते हैं कि किसान, उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए बड़े संख्या में किसान अभी शहरों में चले आ रहे हैं, कारखानों में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण भगवान के समय में वृंदावन में ऐसी अवस्था नहीं थी, सारे गोपगण वहां बड़े धनी थे और बड़े सुंदर सुंदर कपड़े, पगड़ियां, आभूषण इत्यादि पहनकर अपने अपने बांसुरी, लाठी इत्यादि लेकर आए नंद महाराज के घर में, और गोपियां भी नाना प्रकार के गहनों से अलंकृत सुशोभित वहां पर जल्दी जल्दी से आई यशोदा मैया के पुत्र को देखने के लिए। सारे ब्रज में खबर फैल गई कि नंद महाराज और यशोदा मैया की यहां एक पुत्र हो गया है। हाहाकार मच गया, धूमधाम हो गई सारे ब्रज में। सभी लोग वहां आए, अभिनंदन करने लगे नंद महाराज का और यशोदा मैया का कि आप कितने भाग्यशाली हैं, और आपका बच्चा देखिए ऐसे लगता है कि यह साक्षात नारायण है। वो तो नहीं जानते थे कि वो वास्तव में साक्षात नारायण है, वो तो कह रहे थे कि दिख रहे हैं। आप कितने भाग्यशाली हैं, कितना सुंदर बच्चा है ये। इस तरह से नंद महाराज ने वहां जो अनुष्ठान किया, वहां गोप गोपियां भी बड़े खुशी से मौज मना रहे थे। जहां गौएं हैं वहां दूध और दही की कमी नहीं होती, तो वहां पे गोप गोपियां खेल करने को आरंभ कर लिए, दही लिए और दही लेकर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। दही की होली चल रही थी, और फिर वहां पे एक कोई मोटे गोप थे, वो फिसल कर गिर गए, सभी लोग हंसने लगे। इस तरह से खेल चल रहा था गोप गोपियों का आनंद में, क्योंकि ये महोत्सव चल रहा था, और ऐसे महोत्सव के समय उनके पास जो प्रचुर मात्रा में दही, दूध, घी इत्यादि हुआ करता था, वो एक दूसरे के ऊपर छिड़कते थे। आजकल इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। घी के बने पदार्थ खाना, मतलब ये एक ऐश्वर्य का लक्षण है। इसलिए एक नास्तिक हुए हैं इतिहास में, जिनका नाम है चार्वक मुनि। उन्होंने कहा है, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनः आगमनो भवेत। जब तक जीते हो ऐश करो, सुखी से जियो, सुख रहो, सुखी रहो। और कैसे हम सुखी रह सकते हैं? घृतम पिबेत, घृतम मतलब घी, असली घी से बनाए हुए पदार्थ का सेवन करो, मतलब ये जीवन का सच्चा आनंद है। और इसके लिए अगर धन नहीं है कोई परवाह नहीं, ऋण ले लो, कर्ज ले लो, चोरी करो, कुछ भी करो, लेकिन घी खाओ। ये हुए नास्तिक चार्वक मुनि। चोरी करने का, ऋण लेने की बात ये तो दूसरी रही, लेकिन कम से कम एक बात तो उन्होंने सच्ची कह दी, कि असली जीवन मतलब घी में तैयार हुए पदार्थों का सेवन करना, ये असली जीवन है, ना कि आजकल के वनस्पति इत्यादि, ये असली जीवन नहीं है। तो इस तरह से वहां घी दूध बहुत हुआ करता था। इस तरह से हम ये नहीं समझना चाहिए कि जो किसान हैं या वो गरीब हैं या एक अच्छा कोई काम नहीं समझा जाता आजकल। आजकल कोई सरकार में कोई बड़ा अफसर बन गया, कोई उद्योगपति बन गया, तो व्यापारी बन गया, तो लोग समझते हैं कि ये बड़ी बात है। लेकिन हमारे इतिहास में देखा जाता है कि जो इस तरह के वैश्य थे, जो कृषि किया करते थे, गोरक्षा किया करते थे, वो बड़े धनी थे, सुखी थे। और वृंदावन में सुख का सबसे बड़ा कारण तो ये था कि कृष्ण वहां उपस्थित थे। इस तरह से वहां महोत्सव चलता गया और जब महोत्सव समाप्त हो गया, कृष्ण का अभिषेक हुआ, सारे गोप गोपियां इधर उधर इधर उधर बड़े आनंद से जा रही थीं। और इसके बाद में नंद महाराज ने और दान दिया सभी को और ये नंदोत्सव का शुभ अवसर अच्छी तरह से मनाया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर लीलाएं करना आरंभ किए और जैसे ही वो बाल रूप में कार्य करने लगे, सारे गोपगण इतने आकर्षित हुए उनके लीलाओं से कि कृष्ण के बिना वो बिल्कुल रह नहीं सकते थे। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, वो धीरे धीरे से चलने लगे, अपने घुटनों पे, फिर अपने पैरों पे, और जब से वो चलने लगे उनकी लीलाएं, उनकी शरारतें आरंभ हो गईं। सब जगह जाकर वो लोगों को तंग किया करते थे, गौओं को, वत्सों को, गोप गोपियों को, बड़े परेशान हो जाते थे गोप गोपियां। लेकिन फिर कृष्ण के मासूम और सुंदर चेहरे को देखकर उनका गुस्सा खत्म हो जाता था। जब कृष्ण जाकर उनके घर में माखन चुराया करते थे और जब पकड़े जाते थे, जिनके घर में माखन चोरी की थी, वो गोप या गोपी अगर कृष्ण को डांटते कि तुम चोर हो, मेरे घर में आके माखन चोरी करते हो, तो कृष्ण भगवान गुस्से होकर कहते, मैं चोर नहीं हूं, तुम चोर हो, और वैसे भी मैं कोई गरीब नहीं हूं, मेरे घर में कोई दही माखन की कमी नहीं है, मेरे घर में जो मक्खन है तुम्हारे घर के मक्खन से कहीं ज्यादा अच्छा है, और इसके अतिरिक्त ये देखो तुम्हारे घर में जो मक्खन है ये तो बिल्कुल बेकार है, देखो बंदर भी नहीं खा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे बंदरों को भी खिलाया करते थे। इससे हमें समझना चाहिए कि हमारे घर में जो धन है वो केवल हमारा नहीं है, उसका अधिकार केवल हमारा नहीं है, इसके ऊपर इसका बंटवारा होना चाहिए सब प्राणियों के लिए। ये हमारे लिए उपदेश है शास्त्रों का। ऐसा नहीं कि हम धन एकत्र करें और केवल हमारे पास रख लें हमारे भोग के लिए। ये सभ्य समाज नहीं होता। सभ्य समाज वो है जहां व्यक्ति अपने आप के लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए जीता है। कल्पना कीजिए अगर हमारे समाज में लोग ऐसे जीते तो यही तो वैकुंठ हो जाता। वैकुंठ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वृंदावन के लोग इसी भावना से जी रहे थे। लेकिन एक लीला थी कृष्ण भगवान की। और फिर गोपियां के माता यशोदा से शिकायत करती थी कि अरे यशोदा, तुम्हारा जो बच्चा है बड़ा शरारती है, हमें आके इतना तंग करता है। पहले तो हमारे घर में आता है, माखन चोरी करता है, और जब हम मना करते हैं तो चुपके से गुस्से होकर आकर मलमूत्र यहां हमारे घर में इधर उधर फैल जाता है, और फिर जब भाग जाता है तो फिर से लौटकर हमारे छोटे बच्चों के कान को पकड़ के यूं कर देता है ताकि हमारे बच्चे रोने लगते हैं, और फिर आकर हमारे दही के मटके तोड़ देता है, भाग जाता है, और हम उसे डांटने जाते हैं तो इतना मासूम चेहरा लेकर बैठता है कि डांटने की इच्छा ही हमारे हृदय से चली जाती है। तुम सोचते हो कि ये बच्चा बड़ा मासूम है, देखो ऐसे ऐसे भोला भाला जैसे बैठ रहा है, मानो कि उसने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन जान लो सबसे बड़ा शरारती है। तो माता यशोदा बाल कृष्ण की ओर देखती, अलग अलग भावना हृदय में रहती, मन में सोचती, अरे ये भाल भोला भाला बच्चा, मासूम बच्चा है, ये भला क्या शरारत कर सकता है, ये लोग खामखा आ रहे हैं गोप गोपियां शरारत लेकर। फिर बाद में सोचती शायद ये जो कह रहे हैं सही है, लेकिन फिर भी डांटने का मन नहीं होता, कभी कभी डांट भी देती, और जब डांट देती तो कृष्ण भगवान का चेहरा देखकर यशोदा माता भी डांट भूल जाती। इस तरह से कृष्ण भगवान लीला करते रहे सारे वृंदावन में, सबका मन उन्होंने हरण कर लिया। एक बार ऐसे हुआ कि जब कृष्ण भगवान थोड़े बड़े हुए थे तो उनके ग्वाल बाल मित्र बलराम सहित माता यशोदा के पास में आए एक शिकायत लेकर। ये सब भगवान की लीला है भक्तों के आनंद को बढ़ाने के लिए, खास करके गोपियों के आनंद को बढ़ाने के लिए भगवान ये सारी लीलाएं रची। और आ गए और कहने लगे कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है, तो माता यशोदा चिंतित हो गई। वो तो नहीं जानती थी कि मेरा बच्चा तो भगवान है, मिट्टी भी उसी ने बनाई है। उन्होंने कहा, कृष्ण तुम क्यों इतने नटखट हो, क्यों हर रोज मुझे तुम्हारे बारे में शिकायत सुननी पड़ती है, क्या हमारे घर में मिठाइयों की कमी है, दूध दही की कमी है, जो तुम एक सुनसान जगह में जाकर अकेले मिट्टी खाते हो। तो कृष्ण कहने लगे, मैया ये लोग वास्तव में हार गए मेरे से खेल में, इसलिए शिकायत कर रहे हैं, मेरे से ईर्ष्या करते हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब वास्तव में कृष्ण भगवान ने मिट्टी खाई नहीं खाई वो तो कृष्ण ही जाने, लेकिन शिकायत तो आ गई, कंप्लेंट तो आ गया। अब माता यशोदा ने कृष्ण से कहा कि ठीक है मैं देख लेती हूं मिट्टी खाई नहीं खाई, मुंह खोलो। तो कृष्ण भगवान ने मुंह खोल दिया, जैसे हम डेंटिस्ट के पास जाकर डेंटिस्ट बोलते मुंह खोलो, हम खोल देते हैं, कृष्ण भगवान ने आज्ञाकारी पुत्र के रूप में मुंह खोल दिया। यह है भगवान का प्रेम अपने भक्तों के प्रति, वो परम भगवान जिनके स्मरण मात्र से ही देवी देवता और सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, हवा चल रही है, मृत्यु सबका पीछा कर रही है, उनके डर से सब कुछ चल रहा है, लेकिन माता यशोदा के डर से यहां वही परम भगवान कांप रहे हैं, आज्ञाकारी बालक पुत्र बन के मुंह खोल रहे हैं, देखिए मेरे मुंह में मिट्टी नहीं है। और जैसे कृष्ण भगवान ने अपना मुंह खोल दिया तो माता यशोदा ने मुंह के अंदर देखा, तो क्या देखा, सबसे पहले उन्होंने देखा कि सारा ब्रह्मांड अंदर है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, सारे ग्रह लोक हैं, वहां पे ऊपर के लोक नीचे के लोक, 84 लाख योनियां हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, सब कुछ वहां है, और उसमें वृंदावन, और वृंदावन में नंद महाराज का घर, और नंद महाराज के घर में माता यशोदा खुद अपने आप को देख रही हैं, कृष्ण के मुख में देख रही हैं। माता यशोदा ने जब यह दृश्य देखा तो उनका सर चकरा गया, ये क्या मैं देख रही हूं। उनके मन में कई विचार घूम रहे थे, क्या यह स्वप्न है या क्या यह देव माया है, क्या मेरी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है या क्या यह मेरे छोटे बच्चे की योग शक्ति है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर देखते देखते माता यशोदा इस बात का विश्लेषण करने लगी, सोचने लगे मैं तो जगी हुई हूं इसलिए तो स्वप्न नहीं हो सकता, और जहां तक देव माया का प्रश्न है वैसे कहां देवी देवता और कहां मैं जैसी एक साधारण गांव की महिला, एक ग्वालिन, एक गोपी, मुझे देवी देवताओं से भला क्या लेना देना है, देवी देवता ऐसा कष्ट क्यों करें कि मुझे माया में डालें, तो ये तो देव माया का खेल नहीं हो सकता। और जहां तक ये बात है कि क्या मेरी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, मुझे तो नहीं लगता कि मैं पागल हो गई हूं, मैं तो ठीक ठाक से घर के कार्य कर रही हूं, सब कुछ संभाल रही हूं, ठीक से सोच पा रही हूं, बोल पा रही हूं, तो मेरी बुद्धि तो ठीक है, मेरे होश तो ठिकाने हैं, तो अवश्य ये मेरे बच्चे की कोई योग शक्ति होगी, भगवान नारायण ने अवश्य मेरे बच्चे के अंदर ऐसी कोई विशेष शक्ति प्रदान की है, नहीं तो ऐसा दृश्य दिखने में नहीं आता। तो माता यशोदा तुरंत नारायण की स्तुति करने लगी कि हे नारायण, मेरे बच्चे की रक्षा करो, न जाने क्या क्या हो रहा है इसके मुख में, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। उस समय माता यशोदा के हृदय में जो वात्सल्य की, मातृत्व की जो भावना थी, वो क्षणिक कम हो गई। और जब कम हो गई तो कृष्ण भगवान को अच्छा नहीं लगा। तो तुरंत कृष्ण भगवान ने वो योग माया का पर्दा फिर से माता यशोदा के आंखों के सामने डाल दिया। अब माता यशोदा कृष्ण भगवान से इतना प्रेम करती थी कि उनको बिल्कुल ये नहीं पता था कि उनका बच्चा भगवान है, और अगर कह भी देता कोई उनसे ये बात तो वो विश्वास नहीं करती। वो कहती ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरा लाडला बच्चा है, मिट्टी खाता है, मुझे डांटना पड़ता है, हमेशा बार बार चौकीदारी करनी पड़ती है ताकि ये कोई शरारत न करे, और इतने सारे असुर आए हैं, पूतना आए, शकटासुर आए, और इसके जान पे खतरा है, अगर मैं नहीं रहूंगी तो ये बच्चे के लिए जान का खतरा है, इसलिए ये तो मैं विश्वास नहीं कर सकती कि ये भगवान है, ये कैसे हो सकता है। इस तरह से माता यशोदा अपने बच्चे को एक साधारण बच्चा समझकर ही उनके संग लीला कर रहे थे। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने फिर से योग माया का पर्दा माता यशोदा के आंखों पर डाल दिया तो माता यशोदा सोचने लगी कि ये तो एक स्वप्न था, और जैसे हम स्वप्न को भूल जाते हैं एक क्षण में दो क्षण में, उसी तरह से माता यशोदा भी इस अनुभव को भूल चुकी। कह दिया ओ ठीक है, ये तो कोई सपना हुआ होगा, न जाने क्या हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन एक क्षण में माता यशोदा को किया। तो देखिए ये है भगवान। आपको याद होगा कि जब माता देवकी जो कि कंस के कारागर में बंद थी, जब उनके गर्भ से कृष्ण भगवान प्रकट हुए तो देवकी के मन में तूफान जैसा चल रहा था कि अब क्या होगा, कंस आएगा और फिर ये मेरे बच्चे की हत्या करेगा, और दूसरी ओर वो जान रही थी कि मेरा बच्चा विष्णु है, लेकिन वो सोच रही थी कि जिस भगवान के उदर में, पेट में सारा ब्रह्मांड संहार होने के पश्चात प्रवेश करता है, वही भगवान अभी मेरे पेट में है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। और अगर के कोई आदमी, कोई व्यक्ति इस बात को सुनेंगे तो हंसेंगे मेरे ऊपर, ये कैसे हो सकता है, मैं तो उपहास के पात्र बन जाऊंगी। लेकिन वही श्री कृष्ण जिनके उदर में सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं सृष्टि के संहार के बाद में, वही श्री कृष्ण आज यशोदा माता को ये अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। तो ये है भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। इन लीलाओं के प्रति हृदय में आकर्षण जागृत करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे जीवन की परिपूर्णता है। इसलिए हमें चाहिए कि बार बार भक्तों के संग में आएं और ऐसे लीलाओं का श्रवण करें। जितना ज्यादा हम इन लीलाओं का श्रवण करेंगे हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। शुरुआत में अच्छे नहीं लगते इन लीलाएं, क्योंकि हम संसार की कथा सुनने से आदि सुनने के कितने सुन लिए हैं, आदि हो गए, इसलिए अभी अच्छा नहीं लगता हमें। लेकिन जितना हम सुनते हैं धीरे 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 से इतना ही रस बढ़ने लगता है। तो इस तरह से वही अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण यशोदा मैया और नंद महाराज के घर में प्रकट हुए, और नाना प्रकार के कार्य उनके घर में, उनके आंगन में, उनके गोष्ठों में करने लगे। तो देखिए नंद महाराज का कितना भाग्य था। नंद महाराज के घर में साक्षात नारायण कृष्ण के रूप में आए, और जहां नारायण है वहां लक्ष्मी देवी तो होंगी ही, इसलिए नंद महाराज का घर हमेशा लक्ष्मी देवी का निवास स्थान बना। अब देखिए नंद महाराज के आंगन में जो बच्चा अपने घुटनों पे चल रहा था, उस बच्चे को कोई पहचान नहीं पाया। इसलिए एक भक्त हुए हैं जिन्होंने एक सुंदर श्लोक लिखा है। वो कहते हैं, श्रुतिम इतरे स्मृतिम अपरे भारतम अन्ये भजन्तु भवभीताः अहम इह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। वो कहते हैं कि कई लोग उपनिषदों की का पाठ करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो पुराणों का पाठ करते हैं, कई ऐसे होते हैं जो इतिहासों का पाठ करते हैं जैसे कि महाभारत रामायण इत्यादि, लेकिन ये सब क्यों करते हैं? भजन्तु भवभीताः, ये भव रोग जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये जो सबसे बड़ी बीमारी है इस संसार की, इसको भव रोग कहते हैं, जन्म और मृत्यु की बीमारी, बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना और पुनः जन्म लेना। तो जो लोग इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहते हैं, इस भीति से, जन्म और मृत्यु के भय से, वो इन शास्त्रों को पढ़ते हैं, पाठ करते हैं। लेकिन ये संत कहते हैं कि मुझे इन श्रुतियों से स्मृतियों से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो केवल नंद महाराज की उपासना करता हूं। अहम इह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म, मैं उन नंद महाराज की पूजा करता हूं, अर्चना करता हूं, जिनके आंगन में परम ब्रह्म एक साधारण बालक के रूप में खेल रहे हैं। तो देखिए नंद महाराज का क्या भाग्य था, भगवान का माता पिता बनना मतलब ये कोई साधारण बात नहीं है, भगवान का भक्त बनना भी ये कठिन बात है, सभी लोग नहीं कर सकते, सभी लोग मंदिर में भी नहीं आ सकते हैं, इसके लिए भी बहुत जन्मों के पुण्य चाहिए। ये शाम पंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन ते माम दृढ़ व्रता। दृढ़ता से भक्ति करने के लिए ये हमें चाहिए कि हमारे सारे पाप नष्ट चुके हुए हों और हमारे अंदर भक्ति की सुकृति पर्याप्त मात्रा में हो, तभी चल के कोई व्यक्ति भगवान की दृढ़ता से भक्ति कर सकता है। और मंदिर में आने के लिए भी बहुत सारी सुकृति चाहिए। कई लोग हैं बेलगाम शहर में, लेकिन कितने लोग जाते होंगे भगवान के मंदिर में, जहां जाकर भगवान का नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान की सुंदर कथाएं सुनते हैं, सभी के पास ये सुकृति नहीं है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन आर्थो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञाने च भरतर्षभ। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, आम तौर से चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, मेरे शरण में आते हैं, मेरे मंदिर में आते हैं। पहले तो वो हैं जो कि आर्तः पीड़ित हैं, जिनके हृदय में कोई दुख है, हे प्रभु मेरा रोग दूर कर दीजिए, हे प्रभु मेरे घर में कोई संकट है उसे दूर कर दीजिए। दूसरे हैं अर्थार्थी, जो कुछ चाहते हैं भगवान से, कोई भौतिक लाभ चाहते हैं, हे प्रभु मेरे व्यवसाय को बढ़ाइए, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मुझे संसार में बहुत ही एक प्रसिद्ध बड़ा व्यक्ति बनाइए, अर्थार्थी। जिज्ञासु, जो सोचता है चलो जाकर देखते हैं ये भगवान के मंदिर में क्या चल रहा है, इतने सारे इन्होंने पैम्फलेट वगैरह बांटे हैं ये हरे कृष्ण मंदिर में, चलो देख कर तो आते हैं कि क्या चल रहा है यहां पर। सुना है बहुत सारे चीजें हैं हरे कृष्ण हरे राम मंदिर के बारे में, सुने हैं, दम मारो दम भी सुना है, सिनेमा भी देखे हैं और बहुत कुछ हमने सुना है पढ़ा है, जाके देख तो लेते हैं। जिज्ञासु, मन में जिज्ञासा है कि क्या करते हैं ये लोग, गलतफहमियां भी हैं बहुत, लेकिन जो आते हैं भगवान का दर्शन करते हैं गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। और थोड़े हैं जो ज्ञानी हैं, वास्तव में भगवान को जानना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। इस तरह से भगवान कहते हैं कि ये जो सुकृतन है हे अर्जुन, इन्होंने पूर्व जन्मों में सुकृति की है, इसलिए ये लोग मेरे शरण में आते हैं, इसलिए उदार हैं, इसलिए इनको साधारण नहीं समझना, भले वो भौतिक इच्छा लेकर आ रहे हैं। क्योंकि भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए कोई आदमी बाहर जाके बैंक को भी लूट सकता है, कम से कम बैंक को नहीं लूट रहा, भगवान के सामने आ रहा है, तो उदार हृदय का आदमी है वो। लेकिन अर्जुन जान लो कि इसके ऊपर भी कोई व्यक्ति होते हैं, उच्च श्रेणी के व्यक्ति, उनको महात्मा कहते हैं। महात्मा की परिभाषा क्या है? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाशिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे अर्जुन, ये जान लो कि ये संसार में जो लोग मेरे दैवी प्रकृति या मेरे चरण कमलों का आश्रय लेते हैं उन्हें महात्मा कहते हैं। भजन्ति, वो मेरा भजन करते हैं। किस भावना से भजन करते हैं? अनन्य मनसो, अनन्य चित्त से, एकाग्र चित्त से मेरा भजन करते हैं। संसार के भोग में बिल्कुल रुचि नहीं उनको, मेरे अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम्। कैसा, कैसे भावना से भक्ति करते हैं कि ये तो परम ब्रह्म है, ये हमारे आराध्य देव हैं, अव्यय हैं, ये हमारे जैसे साधारण व्यक्ति नहीं है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवाम नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सुमहात्मा सुदुर्लभः। हे अर्जुन, बहुत बहुत जन्मों के बाद में कोई ज्ञानी पुरुष ही इस निष्कर्ष पे पहुंच सकता है कि मैं वासुदेव ही सब कुछ हूं, वासुदेव सर्वम इति, कृष्ण भगवान बता रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति जो इस निष्कर्ष पे पहुंच जाता है, हे अर्जुन, उसे महात्मा कहते हैं। सुदुर्लभः, ऐसे व्यक्ति को पाना संसार में दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ है, अति दुर्लभ। जो वास्तव में भगवान को पहचानता है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में भगवान का परिचय दिया हुआ है। भगवान को संसार में मानने वालों की कमी नहीं है, यह भी अच्छा है, भगवान को मानना चाहिए सभी को, लेकिन भगवान का परिचय बहुत कम लोगों को है। भगवान दिखते कैसे हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे कार्य करते हैं, कहां पर रहते हैं, किन के साथ में रहते हैं, उनका पता क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल क्या है, ये सारी जानकारी ये भागवत और गीता में दी हुई है। यहां आकर जब हम श्री कृष्ण को देखते हैं, बांसुरी बजाते हुए शांति से खड़े हैं, हम आते हैं उनके सामने, भले हमारे मन में जो भी तूफान क्यों ना चल रहा हो या हमारा मन शांत भी क्यों ना हो, वो बस खड़े हैं आराम से बांसुरी बजाते हुए। संसार में भूकंप हो जाए, संसार में अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, उपद्रव हो जाए, खड़े हैं वो आराम से वृंदावन में बांसुरी बजाते हुए, इंतजार कर रहे हैं कि कब ये संसार के लोग मेरे पास आएंगे, मेरे शरण में आएंगे। श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, यही एकमात्र सत्य है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, ये जान लो और घोषणा करो सब जगह है कि मैं ही परम सत्य हूं, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है ये संसार में या फिर संसार के परे भी। जिस तरह से, हे अर्जुन, एक मोतियों की माला में धागे को न देखते हुए भी हम जान सकते हैं कि यहां धागा है, जान सकते हैं ना? कैसे जान सकते हैं? अगर धागा नहीं होता तो सारी मोतियां जो है बिखर जाती, इधर तितर हो जाती। तो जिस तरह से मोतियों की माला को देखकर हम अनुमान सही तरह से लगा सकते हैं कि इस मोतियों की माला में धागा है न देखते हुए, ठीक उसी तरह से भगवान के इस सुंदर अद्भुत सृष्टि को देखकर तुरंत कोई व्यक्ति जो बुद्धिमान है वो अनुमान लगा सकता है कि हाँ, कोई भगवान है जो कि इस सृष्टि को चला रहे हैं, हमें चला रहे हैं, हमारे जीवन को चला रहे हैं। सूरज सही समय पे उदित होता है, सही समय पे अस्त होता है। हम भले रोज 5 मिनट जल्दी देर करें, लेकिन सूरज, चांद, तारे, नक्षत्र, ग्रह, लोग कभी देर से आते नहीं है, ठीक समय पे सब कुछ होता है। तो कैसे संभव है? जहां कोई कानून होता है, कानून बनाने वाला होता है, तो भगवान कहते हैं मैं ही वो कानून बनाने वाला हूं और मुझसे श्रेष्ठ कोई भी सत्य नहीं है। तो वही परम श्रेष्ठ सत्य श्री कृष्ण वृंदावन में आए हैं, नंद महाराज के घर में मिट्टी खा रहे हैं, गौओं को चरा रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं। इसलिए अगर किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए इस बात को सुनकर आश्चर्य की बात नहीं है। कोई बड़ा व्यक्ति ऐसे कार्य थोड़ी करता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बहुत साल पहले, जिनका नाम था ग्लैडस्टोन। तो एक बार उनको दफ्तर में मिलने के लिए कोई व्यक्ति आए। ये छोटी सी कथा को हम बार बार सुनाना पसंद करते हैं क्योंकि इसके बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उनके सेक्रेटरी ने कहा उस व्यक्ति से कि आप बाहरी इंतजार कीजिए। 15 मिनट बीत गए, आधा घंटा बीत गया और ग्लैडस्टोन साहब का कोई पता नहीं। तो आखिर में ये व्यक्ति ने कहा कि जाके देख तो ले कि ये कर क्या रहे हैं ग्लैडस्टोन जी। तो अंदर गए और क्या देख रहे हैं, ग्लैडस्टोन प्रधानमंत्री सारे इंग्लैंड के अपने घुटनों में चल रहे हैं घोड़े बनकर, और उनका पोता जो है उनके पीठ पर छड़ी लेकर उनको मार रहा है, चलो चलो घोड़े, चलो मेरे घोड़े। और ग्लैडस्टोन जी बड़े खुशी से चले लिए जा रहे हैं कंधों के ऊपर। उस समय ब्रिटेन सबसे शक्तिशाली राज्य था। ऐसे कहावत थी उस समय कि इंग्लैंड ब्रिटिश राज में सूर्यास्त नहीं होता था, इतना बड़ा था उनका राज्य। और इतने बड़े राज्य के प्रधानमंत्री राज करने में इतना आनंद नहीं ले रहे हैं जितना कि अपने पोते को अपने कंधे पे रखकर घोड़ा बनकर लीला करना, खेल करना। तो उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी वेदों की स्तुतियों से, बड़े बड़े यज्ञ के आहुतियों से, बड़ी बड़ी तपस्या से, ध्यान करने वाले योगी की तपस्या से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि वो साधारण वृंदावन के ग्वाल बाल और गोपियां जो थी, गोप गोपियां, उनके मधुर और सरल भक्ति से। इसलिए उन्होंने नंद महाराज के घर में आके ये स्वीकार किया। तो जो व्यक्ति को अपने हृदय में यही कृष्ण भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा जागृत हो जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। कृपा करके याद रखिएगा, संसार में यही एकमात्र सत्य है। जरा सोच लीजिए आपके जीवन में सबसे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है, सबसे बड़ा संकट आपके जीवन में क्या हो सकता है। सोचिए एक 5-10 क्षण के लिए अपने ही मन में सोचिए। आप में से कोई शायद सोच रहे होंगे कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो सबसे बड़ा संकट होगा ये, अगर मेरे किसी निकट के रिश्तेदार की मृत्यु हो जाए तो ये सबसे बड़ा संकट हो सकता है, अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी हो जाए या मेरा सारा धन चले जाए, मेरा अपमान हो जाए समाज में, शायद ये सबसे बड़ा संकट हो सकता है। लेकिन जितना भी बड़ा संकट हमारे जीवन में क्यों ना आए, हमें केवल ये याद रखना चाहिए जब उस कष्ट का अनुभव हम कर रहे होते हैं, जब उस संकट के भीतर हम होते हैं, उस समय हमें याद रखना चाहिए कि ये तो तूफान है। जैसे तूफान आता है और जाता है, ऐसे कई तूफाने आएंगी और जाएंगी और आए हैं और गए हैं हमारे जीवन में, इस जन्म में और हमारे अनादिकाल से पूर्व जन्मों में। लेकिन भले तूफाने आए नहीं आए, भले हम तूफान के भीतर हों या बाहर, लेकिन बांसुरी बजाने वाले वृंदावन खड़े होकर बांसुरी बजाते रहे हैं और बजा रहे हैं और बजाएंगे। बस ऐसे संकट के समय इन्हीं को स्मरण कीजिए। ये याद रखिए कि ये सब मिथ्या है, झूठ है, ये सब सपना है। मेरे पैसे चोरी हो गए, मेरा ये हुआ वो हुआ, जैसे कि हम कभी रात में स्वप्न देखते हैं, हाय कोई शेर मेरा पीछा कर रहा है और हम दौड़ते हैं दौड़ते हैं भागते हैं, पसीने छूट जाते हैं और फिर हमारे स्वप्न से हम जाग जाते हैं पसीने पसीने होकर, और फिर देखते हैं हंस लेते हैं, अरे ये तो सपना था, कोई शेर नहीं, सिंह नहीं, कुछ नहीं, मैं तो फलाना फलाना व्यक्ति हूं, और मेरे ये बच्चे हैं, ऐसा है वैसा है, मैं तो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ हूं, कोई डर की बात नहीं है। उसी तरह से संसार में जो हम अनुभव करते हैं ये केवल स्वप्न है, इसलिए इनको सहन करना चाहिए, डामाडोल नहीं होना चाहिए इसमें। कई बार लोग यही प्रश्न करते हैं कि ऐसा संकट मेरे मुझे क्यों आया, लेकिन ऐसा समय बर्बाद करने के बजाय हमें सोचना चाहिए कि ठीक है, जो होना था अपने किस्मत में था सो हो गया, इसके बारे में शोक करने से क्या फायदा है। समय का सदुपयोग करना चाहिए, बांसुरी वाले मुरली मनोहर का भजन करना, उसमें हमारे समय का सदुपयोग हो जाएगा, इससे हमारे मन में इतना आनंद आएगा कि हम सारे संकट को भूल जाएंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पायिनो नित्यः ताम स्थितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, जिस तरह से संसार में गर्मी आती है चले जाती है, जाड़ा आता है चले जाता है, ठीक उसी तरह से संसार का सुख और दुख भी आता है चले जाता है। तो जो व्यक्ति संसार के सुख दुख को सहन करना सीख लेता है वही एकमात्र मुक्ति के लिए योग्य बन जाता है। इसलिए संसार के सुख दुख से विचलित न होकर, संसार के चमक धमक से प्रभावित न होकर, केवल इस मुरली वाले के मुरली के तान से अगर कोई प्रभावित हो जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाए। ये है मनुष्य जीवन का उद्देश्य। कृष्ण भगवान किसी एक प्रांत के नहीं है, किसी एक देश के नहीं है, किसी एक धर्म के नहीं है, कृष्ण भगवान के ऊपर किसी का मोनोपोली नहीं है। कृष्ण भगवान भगवान है, सभी के लिए हैं। भगवान किसी देश जाति धर्म के नहीं होते, भगवान तो भगवान ही होते हैं। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान के बारे में इतनी गहराई में ज्ञान